लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 9 मई को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
नेल वांजेलो दी क्वेस्टा डोमेनिका जेसु डोपो अवर पैरागोनातो से स्टेसो अला विते e noi ai tralci, spiega qual è il frutto che portano coloro che rimangono uniti a lui. Questo frutto è l'amore.
इस रविवार के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने आप की तुलना दाख लता से और हमारी तुलना डालियों से करने के बाद बतलाते हैं कि उनके साथ संयुक्त रहकर हम क्या फल ला सकते हैं। यह फल है प्रेम का। मूल शब्द के रूप में वे फिर से संयुक्त रहने को लेते हैं। वे निमंत्रण देते हैं कि हम उनके प्रेम में दृढ़ बने रहें, ताकि उनका आनंद हम में हो और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। संत पापा ने कहा,
रिमानेरे नेलामोरे दी जेसु,
यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहना। उन्होंने कहा, हम अपने आप से पूछें, यह कौन सा प्रेम है जिसमें यीशु बने रहने को कहते हैं ताकि उनके आनंद को प्राप्त किया जा सके। यह किस तरह का प्रेम है? संत पापा ने कहा, यह प्रेम पिता से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और यह ईश्वर का प्रेम है पिता का, जो नदी के समान उनके पुत्र यीशु में बहता है और उनके द्वारा हम उनकी सृष्टि में आता है। वास्तव में वे कहते हैं, जिस तरह पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी तरह मैं भी तुमको प्यार करता हूँ। जो प्रेम यीशु प्रदान करते हैं, उसी प्रेम से पिता ने उन्हें प्यार किया है। विशुद्ध, बेशर्त, मुफ्त में दिया गया प्रेम, इससे खरीदा नहीं जा सकता। यह मुफ्त है। इसको देते हुए यीशु हमसे मित्र की तरह बर्ताव करते हैं। इस प्रेम के द्वारा वे पिता को प्रकट करते हैं और दुनिया के जीवन के लिए हमें अपने ही मिशन में शामिल करते हैं। संत पापा ने कहा, हम कैसे इस प्रेम में बने रह सकते हैं? यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हम सवाल कर सकते हैं, इस प्रेम में कैसे दृढ़ रहा जा सकता है? प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। यीशु अपनी आज्ञाओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु ख्रिस्त के समान प्रेम करने का अर्थ है अपने आप को सेवा में लगाना, भाई बहनों की सेवा करना जैसा कि उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए, अर्थात अपने आप से बाहर निकलना, अपनी मानवीय सुरक्षा, दुनियावी सुख सुविधा से अनासक्त होना ताकि दूसरों के प्रति उदार हो सके, खासकर जिन्हें सेवा की अधिक आवश्यकता है। इसका अर्थ है हम जो हैं और हमारे पास जो है उससे दूसरों की मदद करना, अर्थात प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से करना है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त के समान प्रेम करने का अर्थ है दूसरे प्रकार के प्रेम को ना कहना जिसको दुनिया प्रस्तुत करती है। धन से प्रेम, जो धन को प्यार करता है वह यीशु के समान प्रेम नहीं करता। उपलब्धियों से प्रेम, शक्ति के लिए घमंड, ये रास्ते प्रेम के लिए भ्रामक होते हैं। वे प्रभु के प्रेम से दूर कर देते और हमें स्वार्थी, संकीर्णतावादी एवं अभिमानी बना देते हैं, और उदंडता हमें उस तरह के प्रेम की ओर ले जाता है जो दूसरों का शोषण करता, प्रेम के पात्र को दुख देता है। संत पापा ने कहा, मैं उस बीमार प्रेम के बारे सोचता हूँ जो हिंसा में बदल जाता है। कितनी महिलाएं आज हिंसा के शिकार हैं। यह प्रेम नहीं है। प्रभु ने हमें जैसा प्रेम किया है वैसा प्रेम करने का अर्थ है हमारे नजदीक रहने वालों की प्रशंसा करना, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना, वे जैसे हैं वैसे ही प्यार करना, न कि उनमें अपनी पसंद की खोज करना, उन्हें मुफ्त में प्यार करना। और अंततः यीशु हमें अपने प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए कहते हैं, हमें उनके अनुसार प्रेम करना है, न कि हमारे अनुसार अपने आप की पूजा करने के लिए। जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीता है वह दर्पण में जीता है, हमेशा अपने आप को देखता। यीशु हमें दूसरों को नियंत्रण में रखने और दूसरों को अपने इशारे पर चलाने के बहाने से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। संत पापा ने कहा, दूसरों की जांच ना करें बल्कि उनकी सेवा करें, अपने हृदय को दूसरों के लिए खोलें, यही प्रेम है, विश्वास करना एवं अपने आप को दूसरों को देना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु के साथ दृढ़ बने रहना हमें कहाँ ले जाता है? यीशु बतलाते हैं, ताकि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु के पास आनंद है क्योंकि वे पूरी तरह पिता से संयुक्त हैं और चाहते हैं कि उनसे संयुक्त होकर हम भी उस आनंद को प्राप्त करें। इस बात को जानने का आनंद कि हमारी बेवफाई के बावजूद ईश्वर हमें प्यार करते हैं, हमें जीवन की तकलीफों का सामना विश्वास के साथ करने के लिए प्रेरित करता है, बेहतर तक पहुंचने के लिए संकट को पार करने देता है। इस आनंद को जीना हमारा सच्चा साक्ष्य है, क्योंकि आनंद ही एक सच्चे ख्रिस्ते का वास्तविक चिन्ह है। एक सच्चा ख्रिस्ते उदास नहीं होता, उसमें वह आनंद हमेशा रहता है, अंधकारमय समय में भी। संत पापा ने प्रार्थना की कि कुमारी मरियम हमें यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहने और पुनर्जीवित प्रभु के आनंद का साक्ष्य देने हेतु सभी के प्रति प्रेम में बढ़ने में मदद दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexit. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने यरूशलेम में होने वाली हिंसा के लिए शांति एवं साझा समाधान का आह्वान किया, क्योंकि फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की इसराइल पुलिस के साथ झड़प जारी है। संत पापा ने कहा, मैं बड़ी चिंता के साथ यरूशलेम में हो रही घटनाओं को सुन रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह मुलाकात का स्थान हो, न कि हिंसक तनाव का। यह एक प्रार्थना एवं शांति का स्थान बने। मैं सभी को निमंत्रण देता हूँ कि मिलजुल कर समाधान ढूंढें, जिससे कि पौत्र भूमि की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान का सम्मान किया जाए एवं भाईचारा बढ़े। हिंसा केवल हिंसा को जन्म देता है, तनाव बहुत हो चुका है। तब संत पापा ने काबुल में आतंकी हमले के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने कहा, एक अमानवीय कृत्य ने कई लड़कियों को मार डाला जब वे स्कूल से निकली। आइए हम उनके तथा उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अफगानिस्तान को शांति प्रदान करे। संत पापा ने कोलंबिया में तनाव और हिंसक संघर्षों के लिए चिंता जताई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है एवं अनेक लोग घायल हैं। संत पापा ने प्रांगण में उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा,
Sono tanti colombiani qui, preghiamo per la vostra patria.
यहाँ कई कोलंबिया उपस्थित हैं। आइए हम आपकी मातृभूमि के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात संत पापा ने इटली के अग्रिजेंटो में धन्य घोषित रोजारियो एंजेलो लिवातिनो की याद की, जो न्याय एवं विश्वास के लिए माफिया के हाथों शहीद हो गए थे। अपने समुदाय में एक धर्मी न्यायाधीश की तरह उन्होंने कभी घूस नहीं लिया। उन्होंने दंड देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए न्याय किया। उनके कार्य ने उन्हें हमेशा ईश्वर के संरक्षण में रखा। यही कारण था कि वे अपनी साहसिक मृत्यु तक सुसमाचार का साक्ष्य देते रहे। संत पापा ने कहा, उनका आदर्श सभी लोगों को प्रेरित करे, खासकर जो न्यायाधीश हैं, वे कानूनों एवं स्वतंत्रता के रक्षक बने। तब संत पापा ने नए धन्य को ताली बजाकर सम्मानित किया। उसके बाद संत पापा ने रोम के विश्वासियों एवं सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और संत पापा ने माता दिवस की याद करते हुए कहा, माताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। इस रविवार को कई देशों में माता दिवस मनाया जाता है। हम विश्व की सभी माताओं का अभिवादन करते हैं, जो अब नहीं है उन्हें भी याद करते हैं। उसके बाद संत पापा ने ताली बजाकर माताओं के प्रति आभार प्रकट किया और अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम से आया है।
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में ईश्वर की इच्छा की तलाश और खोज पर अपने कुछ चिंतन साझा किए। इस किताब को फादर मिगवेल एंजल फियोरिटो ने लिखी है और संत पापा फ्रांसिस ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। संत पापा ने कहा, संक्षिप्त प्रस्तावना का संकेत शब्द मदद है। इसी के साथ मिगवेल ने हमें अपनी पुस्तक का परिचय कराया। यह संत इग्नासियुस की आध्यात्मिक साधना की आत्मा में प्रवेश करने का एक वास्तविक खजाना है। संत पापा ने कहा, फियोरिटो दो बार जोर देकर कहते हैं कि उनकी मदद केवल एक बिंदु तक है। लेखक की अपनी सीमाओं के बारे में स्वीकृति और जागरूकता हमें बताती है कि दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान और विश्वास के भाव उनमें कितने गहरे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने समझाया कि इसमें फियोरिटो की मदद उस बिंदु पर जाती है जहां अन्य अपनी स्वतंत्रता में खुद को मदद करने की अनुमति देता है। इसलिए मदद एक विवेकशील दान द्वारा निर्देशित एक समर्थन है जो सीमाओं का दुरुपयोग किए बिना जानता है कि उन इच्छाओं को भी कैसे पाया जाए जिन पर अनुग्रह निर्भर करता है। संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा, आध्यात्मिक मदद स्वतंत्रता के लिए मदद है। संत पापा फ्रांसिस आगे कहते हैं, यह पुस्तक आध्यात्मिक फ्लैश कार्ड से बनी है जिसमें फियोरिटो ने वह सब कुछ डाला है जो लेखकों में मददगार था। कुछ तरीकों में यह आध्यात्मिक साधना महीने की साधना है जिसका अर्थ है कि उसने उन सबको उद्धृत किया जो लेखकों के लिए सबसे अच्छा था। संत पापा ने पुष्टि की कि फियोरिटो का आध्यात्मिक फ्लैश कार्ड एक साहित्यिक शैली है जो अपने आप में मूल है। नोट्स में लिखे गए विषयों को क्षैतिज शीट पर कभी कभी बिना किसी मार्जिन के फिट करना पड़ता था ताकि इसे एक पंक्ति में पढ़ा जा सके। इन छोटे दिलचस्प और व्यवहारिक लेखन में फियोरिटो ने अन्य लेखकों के ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हुए उन पर टिप्पणी तथा उनकी व्याख्या की है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने उम्मीद जताई कि साधना के लिए छोटे नोटों के अपने आयाम में जिसमें यह पुस्तक लिखा गया है उन सभी को अपने जीवन सुधारने में मदद करेगा जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने स्वर्ण नियम की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराते हुए 10 मई के ट्वीट संदेश में लिखा, दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार हम चाहते हैं, हम उनके साथ भी वैसा ही करें। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी सुने? तो सबसे पहले आप उनकी सुने। क्या हमें प्रोत्साहन की जरूरत है? आइए पहले हम प्रोत्साहन दें। क्या हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी देखभाल करें? तो आइए हम उन लोगों की देखभाल करें जो अकेले हैं और छोड़ दिए गए हैं। और संत पापा फ्रांसिस एक इटालियन न्यायाधीश धन्य रोसारियो लिवातिनो की वीरता की प्रशंसा करते हैं, जिनकी हत्या माफिया द्वारा कर दी गई। संत पापा ने न्यायाधीशों को धन्य रोसारियो के न्याय के माध्यम से मुक्ति को बढ़ावा देने के प्रयासों से सीखने का आग्रह किया। संत पापा फ्रांसिस ने रोसारियो अंजेलो लिवाटिनो के जीवन और शहादत को याद किया, जिन्हें रविवार को इतालवी द्वीप सिसली में धन्य घोषित किया गया। रविवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में स्वर्गीय रानी प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा ने कहा कि सिसली के मजिस्ट्रेट न्याय और विश्वास के शहीद थे। संत पापा ने कहा, एक सामान्य न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा में एक अनुकरणीय न्यायाधीश के रूप में जो कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं झुके, उन्होंने दंड देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए न्याय किया। उनके कार्य ने उन्हें हमेशा ईश्वर के संरक्षण में मजबूती से रखा। यही कारण था कि वे अपनी साहसिक मृत्यु तक सुसमाचार का साक्ष्य देते रहे। संत पापा फ्रांसिस ने सभी से विशेष रूप से न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे धन्य रोसारियो के उदाहरण को देखें और कानून एवं स्वतंत्रता के रक्षक बने। धन्य रोसारियो एक इटालियन न्यायाधीश थे जिसे 1990 में सिसली के अपराध समूहों स्टीडा और कासा नोस्त्रा के प्रमुखों के आदेश के तहत बंदूकधारियों द्वारा मार डाला गया था। रविवार को एग्रीजेंटो के महागिरजा घर में रोसारियो लिवाटिनो की धन्य घोषणा समारोह संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता परम धर्म पीठीय संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल मार्सेलो सेमारो ने की। उनकी धन्य घोषणा के दिन ही समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग ने घोषणा की कि इसने माफिया सदस्यों के बहिष्कार के लिए समर्पित एक कार्यकारी दल स्थापित किया है। एक इटालियन प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार धन्य रोसारियो लिवातिनो कलीसिया के इतिहास में धन्य घोषित किए जाने वाले पहले न्यायाधीश हैं। उन्होंने साहसपूर्वक अपने पेशे को एक मिशन के रूप में किया। कार्यकारी दल माफिया सदस्यों के बहिष्कार विषय का अध्ययन करेगा, दुनिया भर के धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर काम करेगा और इस क्षेत्र में विभिन्न पहलों को बढ़ावा देगा। उधर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि संगठन यूनिसेफ के महानिदेशक हेनरीटा फोर ने अफगानिस्तान के काबुल में सईद उल शुहादा हाई स्कूल के पास हुए भयानक हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में दर्जनों छात्रों, ज्यादातर लड़कियों और कई अन्य लोगों की जानें चली गई। महानिदेशक हेनरीटा ने कहा कि स्कूलों में या आसपास हिंसा अस्वीकार्य है। स्कूल शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए जहां बच्चे सुरक्षा में खेल सकते हैं, सीख सकते हैं और समाजीकरण कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी हिंसा का निशाना नहीं बनना चाहिए। यूनिसेफ संघर्ष करने वाले सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों और मानवीय कानून का सम्मान करने और सभी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आह्वान करता है। काबुल में लड़कियों के हाई स्कूल के बाहर शनिवार को 3 विस्फोटों में कम से कम 30 लोग मारे गए और 52 लोग घायल हो गए हैं। यूरोपीय संघ के मिशन अफगानिस्तान में इस हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया, काबुल में दस्त एक बर्ची इलाके में हुआ भयानक हमला आतंकवाद का घृणित कार्य है। मुख्य रूप से लड़कियों के स्कूल में छात्रों को लक्षित करना, यह अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला करता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।